نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين سورة التين سورة تین بھی آپ دیکھ رہے ہیں مکی سورت ہے قسموں سے شروع ہوئی اور حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے عشاء کی ایک رکعت میں سورۃ تین پڑھی اور میں نے آپ سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا میں نے اتنی خوبصورت پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون قسم ہے تین کی اور زیتون کی تین کیا چیز ہے انجیر اور زیتون آپ جانتے ہیں اب تین جو ہے ویسے بھی اگر اس کو اس پھل کو دیکھا جائے انجیر کا پھل اور زیتون یہ دو مشہور پھل ہیں انجیر جو ہے وہ عمدہ ہے لذیذ ہے اس میں فضلہ فالتو مادہ نہیں ہوتا اور بڑی اس میں غذائیت ہے جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور دوا کے طور پہ بھی یوز ہوتی ہے طبیعت کو نرم کرتی ہے بلغم کو تحلیل کرتی ہے گردوں کو صاف کرتی ہے مسانے کی پتھری کو توڑتی ہے تو بواسیر وغیرہ کو ختم کرتی ہے تو یہ بہت سارے اس کے فائدے ہیں اور زیتون کے تو آپ آج کل بہت ہی سنتے بھی ہوں گے کہ کتنا اولیو کا فائدہ ہے یہ بھی مشہور پھل ہے اور یہ بھی اس کا تیل بھی یوز کیا جاتا ہے تیل بھی بیسٹ آئل اس کو کہا جاتا ہے کولیسٹرول بھی اس میں نہیں ہوتا آج کل تو ریکمینڈ بھی کیا جاتا ہے کہ یہی یوز کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زیتون کی مسواک کیا خوب ہے وہ مبارک درخت ہے وہ بدبو کو زائل کرتا ہے اور منہ کو خوشبودار بناتا ہے بناتی ہے یہ مسواک تو یہ حدیث کی کوئی زیادہ اس کی وہ تو نہیں مجھے ملی سند لیکن پھر بھی زیتون کے اس سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا سورہ نور میں بھی ذکر آیا اور یہاں پہ بھی اگر ان دو پھلوں کو لے لیا جائے تو تین اور زیتون دونوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں ٹھیک ہے ایسا کیوں نہیں کرتے آپ لوگ اپنے بچوں کو قرآن میں جتنے پھل آئے ہیں کسی دن وہ لے کر آئیں اور ان بچوں کو بتائیں کہ یہ سارے پھل ایک ان کی ایگزیبیشن کریں کہ آج ہم یہ پھل کھائیں گے تو ان کو ڈسپلے کریں اور بچوں کو دکھائیں اس سے ذرا زیادہ یاد رہتا ہے نا اچھا تو یہ جو چیزیں ہیں ایک یہ بھی مراد ہو سکتی ہیں لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں جیسے ابن عباس نے فرمایا کہ تین سے مراد نوح علیہ السلام کی مسجد ہے جو جودی پہ بنی تھی جودی پہاڑ تھا نا جہاں پہ ان کی کشتی رکی تھی جا کے اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش کے وہ مقام کہتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی تین اور زیتون سے مراد یہ یروشلم کا سارا ایریا ہے کیونکہ یہاں پہ ہی زیادہ یہ پھل پائے جاتے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ یہ پھل وہیں کے مشہور ہیں یروشلم کے اچھا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں یہاں کی قسم کھائی گئی تو آپ نے دونوں باتیں لکھ لی ہیں کہ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں پہ رکی تھی وہ مقام بھی اور زیتون سے مراد بیت المقدس تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مقام بھی اور پھر آگے وطور سینین اور طور سینا کا طور پہاڑ ایسا پہاڑ جہاں پہ گھنے درخت ہو اس کو طور کہتے ہیں اور سینا وادی کو صحرائے سینا بھی کہتے ہیں سینائی بھی کہتے ہیں تو وہ یہ اسی کے ارد گرد کا ایریا ہے اب یہاں پہ کیا ہوا تھا اس کا آپ کو کچھ یاد ہے یہاں پہ کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی اور جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں بھی ملی تھی وہ یہی ملی تھی وحاد البلد اب یہ ان کی قسمیں کھائی ہیں اور قسم ہے البلد کی شہر کی کون سا الامین جو پر امن ہے اور سب دنیا میں سب سے پر امن شہر کون سا ہے مکہ جہاں کی گھاس تک توڑنی جہاں پہ کوئی کسی قسم کا کسی کو بھی نقصان دینا کوئی خون خرابہ کسی کی چوری کسی کا یہ سب حرام ہے وہاں پہ تو वो सबसे पुरअमन मुकाम, पीसफुल सिटी जिसको कह सकते हैं, वो है। इन तीन जगहों की कसम खाई अल्लाह ताला ने। और तीन जगहों की कसम, इसमें क्या ऐसी कोई खास बात है? यानी आप ये देख लें कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा, इस जमीन पे जो सबसे ज्यादा इज्जत वाली जगह है उनकी कसम खाई है। क्यों वो इज्जत वाली है? क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि ये किससे रिलेटेड है ये जगह, तो वो आपको अब अंदाजा हो गया होगा कि ये वो जगह है जहां पे नबियों से अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया, उनके ऊपर वही उतरी है। अगर हम वतीनी व जैतून से जरूसलम लें तो सबसे ज्यादा पैगंबर अंबिया का मस्कन यही रहा है और मदफून भी यहीं पे, सबसे ज्यादा यहीं पे सबसे ज्यादा पैगंबर आए थे। अगर हम और तूर सीनीन, तो आपको पता चल गया मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, और हाजल बलद अल अमीन में कौन पैदा हुए और किनको नबूवत मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पैगंबरों की, जहां पे पैगंबरों के ऊपर वही नाजिल हुई, उन की यानी उन जगहों की बात हुई है यहाँ पे, उनकी कसम खाई गई है और उनकी अजमत बयान की गई है जहां पे दुनिया के बेस्ट इंसानों को अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया था। और अगर हम अतीन से मुराद ले कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जहां पे उतरी, जैतून से मुराद हमने लिया ईसा अलैहिस्सलाम की मकाम पैदाइश, तूर सीनीन से मूसा अलैहिस्सलाम से जिसे जहां पे कलाम किया गया, हाजल बलद अल अमीन, तो दो लोगों का हमें जहन में आता है, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनकी औलाद से ही तो ये शहर आबाद हुआ था। तो फिर आप देखेंगे कि इन कस्मों में पांच उलुल अजम जो पैगंबर हैं, आपको पता है ना, नूह अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा ईसा अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम, इन सब का जिक्र इनके मस्कनों का यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब ये बेस्ट लोगों की बात आई, उनके जगहों की बात आई, और अल्लाह ताला ने कसम खा के क्या फरमाया, लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम। अलबत्ता तहकीक, ये भी देखें ताकीद है, इसमें ला भी है ताकीद और कद भी ताकीद है, दोनों ताकीदें हैं। कसमों खाने के बाद चार कसमें खाई और फिर फरमाया इंसान को हमने बेहतरीन साख्त पे पैदा फरमाया, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, उसको जो फिजिकली भी पैदा किया, सारी मखलूक से ज्यादा बेहतरीन इसको पैदा किया। जिस हालत में ये होता है, जैसे ये चलता है, देखें खड़ा होता है ये, बाकी मखलूक चार पाओं पे चल रही होती है और नीचे झुकी होती है, इंसान सीधा खड़ा होता है। अल्लाह ताला ने इसके खाने पीने के लिए भी जो बेस्ट सामान है वो इसके खाने के पीने के लिए रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा में, हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दी जमीअ, जो भी जमीन पे पैदा किया सब तुम्हारे लिए पैदा किया। ये सब फूलों की खुशबू है या खूबसूरती है, दरख्तों की ग्रीनरी, और आप जो ये लेक्स और ये सब देखते हैं और वहां से महसूस होते हैं, ये सब सामान खूबसूरती का किसी शेर चीते बंदर के लिए नहीं बनाया, इंसान के लिए बनाया। वो इसे क्या महसूस होंगे, क्योंकि किसी से क्या लज्जत महसूस करेंगे, इंसान महसूस करता है। तो खाने पीने की चीजों में भी इसे भी बेस्ट चीज इंसान खाता है। फिर देखें वो बोल सकता है, वो अपना बयान कर सकता है अपनी बात को, वो गौर और फिक्र कर सकता है, वो उसके पास अल्लाह ने अकल दी है, वो सोच सकता है, समझ सकता है, जो दूसरों के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो जिस्मानी तौर पर भी, जहनी तौर पर भी उसको बेस्ट बनाया है, ये अल्लाह ताला ने एक बेस्ट तख्लीक की है, और फिर उसको शर्फ दिया है, उसको इज्जत दी है कि मलाइका से उसको सजदा कराया। लकद खलकनल इंसाना फी अहसनी तकवीम, तो पहले पैगंबरों की जगहों का जिक्र, फिर जहां पे उनके ऊपर वही आई, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान का शर्फ बयान किया कि इंसान को अल्लाह ने कितने ऊंचे पेडेस्टल पे बिठा दिया कि सारी मखलूक समझ लें, ऐसे ही समझे ना कि सारी मखलूक उससे नीचे है। जब हम कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो क्या मतलब होता है इसका? सबसे बेहतर, सबसे ऊपर टॉप पे इंसान है, सब उसे नीचे है, चाहे वो जिन्नात है, इंसान जिन्नात से बड़ा इंप्रेस होता है, लेकिन जिन्नात भी इंसानों से नीचे है, फरिश्ते भी इंसानों से नीचे है, क्योंकि उनको उन्होंने सजदा किया इंसान को। लेकिन फिर क्या होता है, सुम रददना हूं असफल साफिलीन, फिर रददना, फेर दिया हमने उसको असफल साफिलीन, सबसे निचलों में। अब क्या बात हुई, एक तरफ सबसे ऊंचा और फिर सबसे नीचा, असफल साफिलीन, सब नीचों में भी सबसे नीचा, यानी एक तरफ इंसान हाइट पे था और उसके बाद गिरा भी तो ऐसा गिरा कि कोई उसे नीचा हो ही नहीं सकता, इतना नीचे गिर गया। कैसे ये हुआ, कैसे इंसान नीचे गिर गया? अरे जब वो कुछ ऐसे काम करता है तो वो अपने आप को गिरा देता है। जब वो गिरने भी लगता है ना तो वो किसी उस पे रुकता नहीं है, फिर वो इतना नीचे गिरता है कि फिर उससे नीचे कोई और है नहीं। अरे फिर इंसान का मसलन कीना ऐसा है कि फिर वो उसको भी पीछे छोड़ देता है, जो ऊंट का कीना मशहूर है, फिर वो ऊंट के कीने को भी छोड़ देता है पीछे। जब इंसान नाफरमानी पे तुल जाता है और बुराई की हरकतें करने लगता है तो अल्लाह ताला माफ करे, आपने खबरों में सुनते ही होंगे, फिर इंसान शैतान को भी पीछे छोड़ देता है, शैतान को भी, इतने बुरे काम करता है, ऐसे कि सुन के भी इंसान हिल जाता है कि ये क्या है। जब इंसान फिर यानी अपनी शैतनत में और इसमें बढ़ता है तो फिर वो सारी मखलूक को पीछे छोड़ देता है, दरिंदगी पे उतरता है ना। जब इंसान दरिंदा बनता है, वो दरिंदे, हम दरिंदगी कहते हैं उनको, कि ये दरिंदे हैं, ये जो वैशी जानवर होते हैं इनको दरिंदे कहते हैं, लेकिन जब इंसान दरिंदगी पे उतरता है ना तो ये वैशी जानवर भी देखें इसकी दरिंदगी को तो वो भी शर्मा जाए कि ये तो हमसे भी आगे निकल गया, कि छोटे छोटे बच्चों को भी फिर नेजों के ऊपर रख लेता है। तो जब गिरता भी है ना तो इतनी पस्ती में गिरता है, अखलाकी तौर पे भी इतना घटिया हो जाता है। छोटे मासूम बच्चों के साथ क्या कह रहा है, छोटी बच्चियों के साथ क्या रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, उलाए का कल अनआम बलहुम अदल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हो जाते हैं। जानवर भी कोई, उसके भी कोई एथिक्स होते हैं, इंसान तेरे तो कोई एथिक्स ही नहीं होते। शेर का भी पेट भर जाता है, वो फिर शिकार नहीं करता, वो ऐसे ही जस्ट फॉर फन कभी शिकार नहीं करता, उसको भूख होती है तब वो सिर्फ शिकार करता है, अल्लाह ने उसकी जरूरत रखी है उसमें। वो ऐसे ही नहीं मारता फिरता कि मैं जंगल का बादशाह हूं, मैं बस मारता फिर रहा हूं। कितने आपने जानवरों को मरे हुए देखा जंगलों में, शेर यहां से गुजरा था वो मारता हुआ चला गया, क्योंकि वो दिखाना चाहता था ना कि मैं शेर हूं। कितने आपने देखे, लेकिन इंसान ऐसा ही करता है, वो लाखों का खून बहा के भी उसको एहसास नहीं होता। वो कत्लो गारत पे जब उतरता है, जब उसकी आंखों में खून उतरता है ना, तो फिर वो रुकता नहीं है कहीं, और उसको पता भी नहीं है कि दूसरे ने क्या किया है, क्या कसूर है दूसरे का, और वो फिर भी मारता चला जाता है। तो वो असफल साफिलीन बन जाता है। अल्लाह ने उसको क्या बनाया और वो क्या बन गया, इतना गिर जाता है। सिवाय कुछ लोगों के जो इस चीजों से बच जाते हैं, और फिर असफल साफिलीन इंसान उस वक्त भी तो बनता है, लोएस्ट ऑफ द लो उस वक्त भी तो बनता है ना, जब वो कुफर इख्तियार करता है, शिर्क करता है। आज तो कितना लोएस्ट ऑफ द लो चला गया है कि अल्लाह ताला माफ करे, यानी रोने को दिल करता है कि जब ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि हम डेवल वर्शिपर हैं, हम सैटन वर्शिप करते हैं, शैतान की पूजा करने वाले, अक्लों को क्या हो गया तुम्हारे, तुम असफल साफिलीन बन गए। इन्हें गिरने पे आता है तो उसकी कोई इंतहा नहीं है, सिवाए इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। ये लोग ऐसे हैं जो गिरते नहीं है, मगर क्या इसके लिए शर्त है, ईमान हो और साले अमल। इस ये जो दो शरायत पूरी करेगा वो इस लेवल पे कभी नहीं गिर सकता। ईमान बिलीफ है, और आपको पता है हमारे ईमानियात कितने हैं, अल्लाह पर ईमान, आखरत पर ईमान, रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, तकदीर पर, और साले अमल साथ। वो होगा, वो इस लेवल तक नहीं आएंगे कभी। उनके लिए फिर क्या है, फलहुम अजरुन गैर ममनून, उनके लिए ऐसा अजर है, बताया नहीं गया क्या अजर है, बस ऐसा रिवॉर्ड है जो गैर ममनून है, कभी उसने खत्म ही नहीं होना, एंडलेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, कंटिन्यूस। अजर कितना अच्छा होगा जो कभी खत्म ना होने वाला होगा। दुनिया में हर चीज जो भी आपको रिवॉर्ड मिलता है वो कभी ना कभी खत्म हो जाता है, हर नेमत खत्म हो जाती है, इंसान की जिंदगी तक खत्म हो जाती है। तो उनका रिवॉर्ड शुरू होगा लेकिन उसका एंड कोई नहीं होगा। और सच बात है कि जो ईमान ला के साले अमल करते हैं उनका तो रिवॉर्ड इस दुनिया से ही शुरू हो जाता है। इस दुनिया में ही अल्लाह ताला उनको ऐसा सुकून दे देता है, ऐसे अल्लाह ताला के साथ उनका कनेक्शन हो जाता है, वो जो उनको इत्मीनाने कल्ब मिलता है ना, वो यहीं पे अल्लाह की रजा में राजी रहने वाले होते हैं। फिर उसके बाद जो उनको इत्मीनाने कल्ब मिलता है वो तो उनकी जन्नत ही है ना। जैसे इमाम इब्ने तैमिया को जब कैद खाने में डालने लगे थे तो फरमाया मेरी जन्नत तो मेरे अंदर है, वो मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता, वो मुझे चाहे कैद खाने में डालो जाए। फमा युकद्दिबुका बादु बिद्दीन, तो कौन है जो झुटलाएगा का तुझको बादु बिद्दीन, बाद जजा सजा के, या दूसरा बाद, इससे मुराद क़यामत का दिन भी है। यानी कौन है युकद्दी को झुटलाएगा ए नबी आपको इसके बाद, ये जो सारी बातें सुनने के बाद जजा सजा के दिन को हम कैसे झुटला सकते हैं? ये जजा सजा के दिन को, इस बात को कोई झुटला ही नहीं सकता। जिस जो भी इंसान अपना जहन खोल के सोचे वो कैसे रिजेक्ट कर सकता है? दूसरा माना है बादु बिद्दीन, यानी दीन को कौन झुटलाएगा। यानी अब जब ये इतनी बातें हो गईं, जब अल्लाह ताला ने ये सब बात बता दी अपने नबी की जुबानी, तो दीन इस्लाम को कैसे तुम रिजेक्ट कर सकते हो? कौन रिजेक्ट कर सकता है इंसान? तुम कैसे कर सकते हो रिजेक्ट इस जिक्र के बाद, ये सारी बातें होने के बाद? कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने पर आमादा हो जाएगा? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या नहीं है अल्लाह सब फैसला करने वालों में सबसे बढ़कर फैसला करने वाला? बला व अना अला ज़ालिका मिन शाहिदीन, इसका जवाब है कि क्यों नहीं अल्लाह, और मैं इसके ऊपर गवाही देने वालों में से हूं कि आप वाकई सब फैसला करने वालों में सबसे बढ़ के फैसला करने वाले। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब से कहा, बाद से रिवायत में सुभाना का बला भी है, तो अगर आपको लंबा नहीं आता तो सुभाना का बला ये भी आप याद कर सकते हैं कि यानी दुनिया में जितने जज हैं वो ही कभी किसी के दबाव में आके फैसला कर देता है, कोई लालच में आके कर देता है, कोई किसी को समझ ही नहीं पड़ती तो वो सिंसियर होता भी है लेकिन उससे सही फैसला नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं है। जब वो उस दिन फैसला करेगा तो हर हकदार को उसका हक मिल जाएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.